चार्वाक की समीक्षा। चार्वाक शब्द ही भारतीयों की दृष्टि से सामान्यतया निकृष्ट माना जाता है। सभी दार्शनिक इसकी कट्टर आलोचना करते हैं तथा इसकी भारतीय दर्शन में सबसे अलग स्वरूप मानते हैं। इसके निम्न कारण हैं। एक, सब दर्शनों ने एक से अधिक प्रमाण माने हैं, पर इसने केवल एक प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना। अनुमान का निषेध कर इसने व्यावहारिक जीवन के लिए कठिन मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि अनुमान में ही हम जीते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, नियम बनाते हैं, भविष्य के प्रति सजग रहते हैं। पर जहाँ यह कहता है कि शरीर में चेतन है तथा शरीर के अंत में के साथ वह समाप्त हो जाएगा, आत्मा या ईश्वर नहीं है, संसार भूतों के संयोजन का फल है आदि, तो सभी अनुमान पर ही आधारित हैं। अतः यह एक और अनुमान को असिद्ध करता है तो दूसरी और उसी के आधार पर मत प्रतिपादित करता है। दो, शब्द को यदि ज्ञान का साधन न माने तो ज्ञान की समी सिकुड़ जाएगी, सारे ग्रंथ तथा अप्रवचन निरर्थक हो जाएंगे। यह एक प्रलाप सा लगता है, क्योंकि सीखने का माध्यम अनुभव होता है, वह शब्द से ही निहित है। अगर इसे अस्वीकार कर दे तो अतीत के परिणामों से हम कुछ सीखकर आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसमें वेद के विरोध की पक्षपात पूर्ण अभिव्यक्ति है। तीन, यहाँ प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना गया है कि यही सत्य होता है, पर कभी कभी प्रत्यक्ष भी भ्रमित कर देता है, जैसे मृग मरीचिका से जल का अनुमान होना, रस्सी को अंधकार में सांप समझना, सूर्य का पूरब से पश्चिम घूमना आदि, जबकि न वहां जल है न सांप है और न सूरज पृथ्वी के ऊपर घूमता है। प्रत्यक्ष को ही ज्ञान का साधन मानना ज्ञान को सीमित करना है। चार, विश्व की उत्पत्ति चार भूतों के संयोजन से मानना स्वयं प्रत्यक्ष नहीं है, इसमें होने वाली परिवर्तन का क्या उत्तर दे सकता है? क्यों कहीं जमीन पानी में हो जाता है, कहीं धरती पर रेगिस्तान फैलता है आदि। दूसरे भूतों को ये गतिहीन मानता है तो फिर वे मिलते कैसे हैं? तीसरे, आकाश तत्व को कैसे अलग कर सकते हैं? आकाश तो शरीर में होता है, फिर शरीरांत होने पर आकाश या शून्य किसमें विलीन होगा? चौथे, भूतों से भौतिक अभौतिक की उत्पत्ति मानता है, भौतिक की उत्पत्ति तो माना जा सकता है पर अभौतिक की व्याख्या नहीं हो पाएगी, चेतन की उत्पत्ति भूतों से होते नहीं देखी गई। यहाँ चूना और पान से लाल रंग की उत्पत्ति का सहारा लेना उपमा है, तर्क नहीं। पांच, इसने शरीर का गुण चेतन माना है, पर सुषुप्तावस्था बेहोशी या तुरियावस्था में शरीर तो रहता है पर उसमें चेतना नहीं होती। आत्मा के प्रत्यावर्तन में शरीर मृतक सा हो जाता है और आत्मा इससे बाहर चली जाती है, फिर लौटने पर वह चेतन हो जाता है, पर वहां आत्मा के हटने पर मृत्यु या शरीरांत नहीं होता। अतः आत्मा का निषेध तथा चेतन को शरीर का गुण मानना संभव नहीं है। पुनः आत्मा को अप्रत्यक्ष मानता है पर उसका निषेध नहीं करके विचार भी करता है। छह, ईश्वर को अप्रत्यक्ष मानना भूल है, क्योंकि वह भक्तों को दर्शन देते हैं। ईश्वर को न मानना भी अनुमान है, या अनुमान को प्रमाण नहीं मानता तो इसे क्यों स्वीकार करता है? दूसरे, ईश्वर की सत्ता को नकारना सामान्य मनुष्य का स्वभाव नहीं है, नास्तिक भी संकट में उसको मानने लगते हैं। तीसरे, अगर वह ईश्वर की बात करता है तो स्पष्ट है कि ईश्वर की सत्ता का आभास उसे है जिसको वह नकारता है। चौथे, संसार की उत्पत्ति में निमित्त कारण को न मानना और उपादान कारण से ही संसार के निमित्त को जोड़ना एक महान भ्रम है। अगर हम मिट्टी पानी चाक रख दे तो क्या घड़ा बन जाएगा? सात, चार्वाक का सुखवाद निकृष्ट कोटि का है, वह क्षणिक निजी ऐन्द्रिक सुख को ही सुख मानता है, शाश्वत सुख की बात नहीं करता। निजी सुख की बात मनुष्य को स्वार्थी बनाता है, पर मनुष्य का स्वभाव स्वार्थ के साथ परमार्थ का भी होता है। वह अपने सुख का बलिदान कर दूसरे के सुख की व्यवस्था करता है, जैसे पिता सीमा पर लड़ने वाला सैनिक, पति, मित्र, सन्यासी आदि। यद्यपि सुख की अनेक कोटियां हैं, परम सुख, सांसारिक सुख, शारीरिक सुख आदि, इसमें यह शारीरिक सुख तक ही सीमित करता है, यह महान भूल है। इससे नैतिकता की परिभाषा ही बदल जाएगी, अराजक राज्य की तरह समाज में अव्यवस्था का साम्राज्य हो जाएगा, यह समाज की व्यवस्था का विनाश कर देगा। इस प्रकार न इसमें नैतिकता ही है न नीति ही है। जब नैतिक मूल्य यहाँ है ही नहीं तो वह समाज पशुओं का हो जाएगा। लगता है ऐसा विचार सामान्य लोगों में लोकप्रियता के लिए व्यक्त किया गया है। 8. चार्वाक दर्शन का पतन हो गया क्योंकि यहाँ व्यवस्था का विरोध है। 2. यह स्वच्छंदवाद को बढ़ावा देता है। 3. सामान्य जनभावना का विरोधी है क्योंकि ईश्वर वेद धर्म आत्मा आदि का निषेध करता है। 4. वेद के देश में वेद का खंडन स्वयं में एक आश्चर्य है जिसे जनमानस स्वीकार नहीं कर सका। 5. भारतीय संस्कृति दर्शन परंपरा से पूर्ण भिन्न है। 6. इसमें जीवन के या तो गिरते मूल्य हैं या मूल्य है ही नहीं कि जीवन को उन्नत किया जा सके। 4. की देन, चार्वाक को अन्य दार्शनिक हीन दृष्टि से देखते हैं, तभी उन्होंने अपने दार्शनिक मत के प्रतिपादन में सबसे प्रथम इसी की आलोचना की है। यह इतना अतिशयोक्तिपूर्ण है कि सामान्य जनमानस इससे तिलमिला उठता है। इसलिए हिरण्यन्ना ने इसके द्वारा की गई आलोचना को अवास्तविक बताया है। फिर भी यह कुछ हद तक भले बुरा हो पर इसमें बहुत कुछ रूढ़ियों के प्रति विद्रोह की लहर है जिसने जनता को परंपरा से आगाह कर उनसे बचने के लिए चैतन्य किया एवं स्वतंत्र विचार करने की प्रेरणा दिया। इसकी देन निम्न है। 1. वेद का इसने विरोध किया और ब्राह्मणों के वर्चस्व का मजाक उड़ाया। वेद की निंदा करना उसका दोष है पर ब्राह्मणों के विरुद्ध विद्रोहात्मक भाषा प्रयोग उनकी समाज पर हटवादी पकड़ है। हटवादी पकड़ को ढीला करने के लिए सही कदम था। उनकी जकड़न इतनी बढ़ गई थी कि वे पृथ्वी के देवता के रूप में पूजित थे। चूंकि वैदिक ऋचाओं की व्याख्या ब्राह्मण अपने हित में अपनी दृष्टि से करते थे, इससे वेद के प्रति भी इसने विरोध व्यक्त किया। इसी का दूरगामी परिणाम रहा है, ब्राह्मणवाद की पकड़ ढीली होने लगी। 2. अभी तक खुलकर विरोधी स्वर धर्म गुरुओं, अनैतिक कर्मकांडों, रूढ़ियों, अंधविश्वासों के लिए मुखरित नहीं होता था। इसके तर्कों का परिणाम हुआ कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति को सहारा मिला। इसने मानव को दबाव मुक्त बनाया तथा अपनी बात कहने के लिए प्रेरित किया। 3. इसकी युक्तियां अत्यंत प्रभावक हैं। जो युक्तियां इसने विवादास्पद तत्वों के विषय में दिया वे इतनी सटीक हैं कि उनको एक बार मानने के लिए कोई भी बाध्य हो जाता है। इस संबंध में आत्मा संबंधी युक्तियों को हिरण्यन्ना ने वाद विवाद से परे माना है। 4. चार्वाक में पुरुषार्थों के बीच अर्थ और काम को महत्व दिया गया है। यह महत्व वात्स्यायन के काम सूत्र में भी है। वह भी मानते हैं कि भूख से जैसे शरीर की रक्षा की जाती है, उसी तरह इंद्रिय तृप्ति भी मानसिक शांति के लिए आवश्यक है। अंतर इतना ही है कि जहाँ यह ऐन्द्रिक सुख को भोग के लिए केंद्रित करता है, वहीं वात्स्यायन ने इसे नियंत्रित जीवन के लिए बताया है। वात्स्यायन से यह भी ज्ञात होता है कि चार्वाक इस पंक्ति में अकेला नहीं है, क्योंकि वह कहते हैं कि हमारे ईस्वी सन से पहले 12 ऐसे विचारक रहे हैं, यद्यपि उनके ग्रंथ अब सुलभ नहीं हैं। 5. सभी दार्शनिकों ने सुख भोग की आवश्यकता पर किसी न किसी प्रकार बल दिया है। सामान्य व्यक्ति भी सुख भोग की इच्छा से ही कोई कार्य करता है, पर चार्वाक का यह कथन इसलिए घृणित है कि इसमें स्वार्थ सुख, निजी सुख तथा शारीरिक सुख की बात की गई है। किंतु इसी प्रश्न पर चार्वाक में 2 वर्ग उभरे, एक शिष्ट और दूसरा अशिष्ट। अतः शारीरिक सुख में डूबना अशिष्ट वर्ग की बात रही होगी, क्योंकि शिष्ट वर्ग आत्मसंयम और नैतिकता पर बल देता है तथा धर्म, अर्थ और काम को जीवन का लक्ष्य मानता है। यह वर्ग केवल निजी सुख की बात नहीं करता।